ओम शांति। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति से निर्विघ्न जीवन अनुभव करना, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति बनाने के लिए हमें मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं इस स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करना जरूरी है। जैसे जैसे हम इस स्वमान का अभ्यास करते हैं तो आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं, डॉर्मेंट शक्तियां हैं, वो शक्तियां जागृत होने लगती हैं और शक्तियों की वृद्धि होने लगती है। क्योंकि हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। जैसे आइस के बर्फ के बहुत बड़े ब्लॉक को पानी में रखते हैं तो केवल उसका आठवां हिस्सा दिखाई देता है, ऊपर सात हिस्से उसके पानी में डूबे हुए होते हैं। तो ऐसे जब हम बाबा के पास आते हैं और जितनी शक्तियों का ज्ञान या अनुभव हमें होता है वो केवल 1/8 होता है। सात हिस्सा जो शक्तियां हैं आत्मा में सुषुप्त रूप में होती हैं और उन सुषुप्त शक्तियों को जगाने का एक ही तरीका है, एक ही साधन है, स्वमान में स्थित रहना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, यह स्वमान उस सोई हुई शक्तियों को स्वतः ही जगाता रहता है। दूसरी बात, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति बनाने के लिए आवश्यक है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। हम हर रोज योगाभ्यास अमृत वेले नुमा शाम के समय करते हैं और बाबा से थोड़ी बहुत शक्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में हजारों संकल्प मन में क्रिएट करते हैं। कर्म करने के लिए संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विभिन्न प्रकार के संकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं। उससे आत्मा की बहुत कुछ ऊर्जा खर्च होती है। तो जितना हम शक्तियां जमा करते हैं उतना गवाते हैं, यूज करते हैं। तो शक्तियों को जमा करने के लिए आवश्यक है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। तो शक्तिशाली योगाभ्यास से बहुत शक्तियां हम बाबा से प्राप्त करते हैं और खर्च थोड़ी शक्तियां होती हैं, परिणाम स्वरूप जमा का खाता हमारा बढ़ता जाता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति हमें होने लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति अर्थात शक्तियों का खजाना हमारे पास भरपूर हो, शक्तियों के खजाने से माला माल हो। क्योंकि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है और मैं बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति की अनुभूति हमें होने लगती है। और तीसरी बात, नुमा शाम के समय या अमृत वेले योगाभ्यास के बाद हमें विश्व कल्याण कार्य स्थिति का अनुभव बढ़ाते रहना जरूरी है। बाबा से शक्तियां लेते रहना है और दूसरे तरफ अनेक आत्माओं को शक्तियां प्रदान करते रहना है। इससे क्या होगा, इससे अनेक आत्माओं की दुआएं हमें प्राप्त होती रहेगी और उस दुआओं के आधार से बाबा से शक्तियां ग्रहण करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी और हम शक्तियों से मालामाल होते जाएंगे और मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति करते रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति अनुभव करना अर्थात जो भी हमारे पांच शक्तियां होती हैं, अष्ट शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों को अपने ऑर्डर के प्रमाण यूज करना, प्रयोग में लाना, उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, ये अथॉरिटी अनुभव करना। तो अष्ट शक्तियां ये हमारी रचना है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर रचयिता हूं, तो ये शक्तियां मेरे ऑर्डर पर चलती रहें, इन शक्तियों पर पूरा मेरा नियंत्रण हो और अनुशासन हो, इसके लिए आवश्यकता है हमें इन अष्ट शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। जब उनके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम इन शक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए और अनुशासन करने के लिए सरल हो जाता है। तो अष्ट शक्तियों के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे लौकिक दुनिया में पावर हाउस से हम अपने घर में करंट लेते हैं इलेक्ट्रिक का, तो पावर हाउस वाले हमारे घर के सामने इलेक्ट्रिक पोल रखते हैं, लगाते हैं और उससे हमें पावर कनेक्शन देते हैं। और जब हमें इलेक्ट्रिक करंट का कनेक्शन मिल जाता है, तो फिर हम अपने घर में विभिन्न प्रकार के काम करते रहते हैं। वो इलेक्ट्रिक पावर लाइट भी ट्यूबलाइट के द्वारा देती है, हीटर के द्वारा गर्मी देती है, रेफ्रिजरेटर के द्वारा ठंडी देती है, तो विभिन्न प्रकार के फंक्शन हम उस इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा अनुभव करते जाते हैं। ऐसे ही बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे जब हम बुद्धि की तार जोड़ते हैं, तो आत्मा रूपी बल्ब में वो करंट आता है, शक्ति आती है। और जब शक्ति आती है, तो उन शक्तियों का प्रयोग हम अपने हिसाब से आवश्यकता के अनुसार करते रहते हैं। तो सारे दिन भर में अष्ट शक्तियों का प्रयोग कारोबार में रहते हुए हमें करते रहना है। उससे क्या होगा, शक्तियों की वृद्धि होती रहती है। जितना ये शक्तियां हम प्रयोग में लाते हैं, उतनी शक्तियां वृद्धि को पाती रहती हैं। इसलिए सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार है शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति के बारे में सोचना, जिसके कारण हम आत्मा की शक्तियां और समय को हम खर्च करते हैं, यूज करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय की आवश्यकता है विस्तार को संकीर्ण करने के लिए। तो हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि घर जाने का समय बहुत समीप आ रहा है, इसलिए हमें बिंदु समझकर बिंदु देखने का अभ्यास बढ़ाते रहना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के साथ विस्तार में रहकर, बाहर से विस्तार में रहकर अंदर से बाबा सार में रहते थे, और सार में रहते हुए कर्मातीत स्थिति की ओर आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे ही हमें बाहर से विस्तार में रहना है और अंदर से सार में रहना है। तो ऐसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को बढ़ाते रहना है। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति में पेटी और बिस्तर बंद रूप में दिखाते हैं। व्यर्थ संकल्पों का बिस्तर और समस्याओं की, अनेक समस्याओं की पेटी को हमें बंद करके रखना है। इस पेटी को और बिस्तर को बंद रखना है तभी हमें घर जाने के लिए सहज अनुभव होगा। अगर इसमें से कुछ बात रह जाती है तो हमारा बुद्धि योग वहां जाएगा। इसलिए समेटने की शक्ति को बढ़ाना अर्थात कछुआ वृत्ति को बढ़ाते जाना। लेकिन कोई बात ऐसी अनहोनी होती है तो कछुआ के बजाय हम आपस में कहते हैं कुछ हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ, हर एक के मुख में वही शब्द होता है। तो हमें कुछ हुआ नहीं लेकिन कछुआ वृत्ति को अपनाना है, समेटने की शक्ति को बढ़ाते जाना है। हमने देखा जानकी दादी जी अंतिम दिनों में समेटने की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करती थी। तो बाप दादी जी हमेशा शुक्रिया बाबा का गीत गाती थी, और मैं कौन और मेरा कौन, यही पाठ सदा पक्का करती रहती थी। तो ये है समेटने की शक्ति का प्रमाण। तीसरी शक्ति है समेटने की शक्ति के बाद समाने की शक्ति। समाने की शक्ति अनुभव करने के लिए जैसे बाबा सागर हैं वैसे हमें भी मास्टर सागर अनुभव करना होगा। जैसे बाबा किसी की कमी कमजोरी को देखने के बाद भी सदा गंभीर रहते थे, ऐसे हमें भी किसी की कमी कमजोरी देखते हुए भी बहुत उसको समाना है। इधर उधर उसकी चर्चा नहीं करना है वरना वायुमंडल को खराब करने के निमित्त हम बनेंगे। अगर किसी के अकल्याण के बोल हैं तो हमें उस बोल को कल्याण में बदल देना है। कोई निंदा करता है तो उसको स्तुति में बदल देना है। तो ऐसी स्मृति और दृष्टि रखने वालों को ही विश्व कल्याणकारी आत्मा कहते हैं। इसलिए हमें विश्व कल्याणकारी स्थिति को बढ़ाने के लिए इस बात को भी जीवन में अपनाना होगा। उसके लिए साक्षी दृष्टा होकर रहने का अभ्यास बढ़ाते रहें। जैसे शिव बाबा के पास सारे ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट है, इसलिए हरेक बच्चे से बेहद प्यार करते हैं। हरेक बच्चे में गुण और विशेषता ही देखते रहते हैं। तो ऐसे हमें भी साक्षी दृष्टि को बढ़ाते हुए इन सुक्तियों को अच्छी तरह से प्रयोग में लाते रहना है। अभी चौथी शक्ति है सामना करने की शक्ति। हमें दैवी परिवार से सामना नहीं करना है, लेकिन माया से, परिस्थितियों से, कठिनाइयों से सामना करना है। और सामना करने के लिए आवश्यकता होती है हिम्मत और साहस की। हमने देखा जैसे जैसे हम सामना करते जाते हैं तो हमारे में हिम्मत बढ़ती जाती है। ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत चुनौतियां आई, बाबा ने बड़े मस्ती से उनका सामना किया, हिम्मत से सामना करते रहे। तो बाबा के चरित्रों को हमें सामने रखना है और बाबा के चरित्रों को फॉलो करना है, तो सामना करने की शक्ति भी हमारी बढ़ती जाएगी। उसके लिए मैं विजयी आत्मा हूं इस सम्मान में स्थित रहना है। मैं विजयी आत्मा हूं इस सम्मान में स्थित रहने से सामना करने की शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी और हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करते रहेंगे। पांचवी शक्ति है सहन करने की शक्ति। 63 जन्मों का हमारा अनेक आत्माओं के साथ नेगेटिव अकाउंट है। इसके कारण कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने परीक्षा के रूप में आता है हमारा पेपर लेने के लिए, जो हमारा हिसाब किताब नेगेटिव है हमें योग के द्वारा सेटल करना होता है, या फिर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके सहन करके सेटल करना होता है। हम देखते हैं न चाहते हुए कोई आत्मा हमारे पास सामने आ जाती है, हमारे से टकरा जाती है और उस परिस्थिति में हम थोड़ा सा हिल जाते हैं, लेकिन हमें सोचना है मुझे सहन करना ही है और इस हिसाब के किताब को सेटल करना है। अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति को हम सहन करते हैं और साथ साथ उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोचते रहते हैं, तो एक तरफ हिसाब किताब का सेटलमेंट होता है और दूसरे तरफ नया हिसाब किताब बनता जाता है। इसलिए हमें निरसंकल्प होकर रहना है और उसको सहन करना है। मान लीजिए आपके साथ में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु दुखद व्यवहार करती है, दुखद घटना आपके सामने आती है, आप 4-5 बार उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन 6वीं बार आपके मुख से निकलता है बस अभी बहुत हो गया, मैं इसके बाद सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे सहन नहीं करना है, हम उसका जवाब देने लगते हैं, इसका मतलब 5 बार हमने मजबूरी से सहन कर लिया, 6वीं बार हम उसको सहन नहीं कर सके, तो सहनशीलता के गुण का जो मेडल हमें मिलना है वो मेडल हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें 2-3 बातें हमेशा बुद्धि में रखनी है। कौन सी? पहली बात, जितनी बड़ी महान विभूति उतनी ज्यादा सहन शक्ति उसमें होती है। अब कितनी महान विभूति मुझे बनना है वो आपके हाथ में है। जितना ज्यादा सहन करते जाएंगे उतना बड़े महान विभूति आप बनते जाएंगे। दूसरी बात, सहना आत्मा का सच्चा गहना है, इस गहने को मैंने पहनना है। तो जो व्यक्ति हमारे सामने पेपर के रूप में आता है वो हमें सहनशीलता का मेडल या गहना देने के लिए आता है, उसको हमें शुक्रिया अदा करना है। और तीसरी बात, जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। तो ये दो तीन बातें अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में सहन करने लगेंगे और अपनी स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में अनुभव करते रहेंगे। कोई पहलवान होता है, उस पहलवान को अगर कोई बुक्के मारता है उसके बदन पर, तो वो कहता है बहुत अच्छा मालिश हो रही, बहुत अच्छा, और करो और मारो बुक्के, क्योंकि वो पहलवान है। लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति को बुक्के मारता है कोई, तो उसको दर्द होता है, वो चिल्लाता है, नहीं मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मैं सहन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब पहलवान जो होता है उसको वो सहन कर लेता है। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाला व्यक्ति सहन हर परिस्थिति को या हर समस्या को करते करते आगे ही आगे बढ़ता रहता है। वो हर परिस्थिति का आनंद लेता है, कोई भी विघ्न आता है, कोई भी तूफान आता है, उस तूफान को भी वो तोहफा अनुभव करता है, आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाली बात अनुभव करता है। छठवीं बात, छठवीं शक्ति है सहन शक्ति के बाद, छठवीं शक्ति है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति अर्थात जानना, पहचानना और स्वयं उसको रियलाइज करना। माया, कोई व्यक्ति आती है, कोई परिस्थिति आती है, उसको तीनों कालों से देखना। तो जब हम तीनों कालों से उसको देखते हैं तो बुद्धि उसको अच्छी तरह से परख लेती है। और जैसे बुद्धि हमारी विशाल बनती है, दिव्य बनती है, तो हमारी परखने की शक्ति बढ़ती जाती है। एक बार एक विदेशी भाई ने बाप दादा से प्रश्न पूछा था कि बाबा, हमें कभी टचिंग मिलती है तो वो टचिंग मेरी खुद की है या बाबा की टचिंग है, इसको कैसे परखे, इसके परख क्या है। कोई भी अचानक टचिंग हमें मिलती है तो वो टचिंग बाबा की है या मेरी खुद की क्रिएशन है। तो बाबा ने जवाब दिया था, उसकी परख तीन बातों से कर सकते हैं। अगर वो बाबा से दी हुई टचिंग है तो पहली बात वो शक्तिशाली टचिंग होगी, दूसरी बात वो शक्तिशाली टचिंग होगी, उसको जब हम प्रैक्टिकल में लाएंगे तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे प्रश्न हमारे मन में जागृत नहीं होंगे, और तीसरी बात उस टचिंग को, उस बात को जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हमें बहुत सफलता अच्छी मिलती है। क्योंकि क्योंकि बाबा जब टचिंग्स देते हैं उस समय एक्स्ट्रा शक्ति भी देते हैं, ताकि उस टचिंग को हम प्रैक्टिकल में लाकर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से परख शक्ति को हमें बढ़ाते जाना है। और सातवीं शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति का कनेक्शन है महसूसता की शक्ति से या रियलाइजेशन पावर से। जब रियलाइजेशन शक्ति बढ़ती है तो हमारी जो रियल आय है ये बुद्धि रूपी नेत्र है उसकी ज्योति बढ़ती है, और जब तीसरे नेत्र की ज्योति बढ़ती है तो हमें रॉन्ग और राइट का अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होता है। परिणाम स्वरूप हमारी निर्णय शक्ति बहुत शार्प होती है। ऐसी आत्माएं बहुत सटीक निर्णय पाने में सफल होते हैं और हर परिस्थिति में यथार्थ निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति के लिए हमारा स्वभाव बड़ा सरल हो, हमारे मन में सर्व के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना पनपती रहे, रहम और दातापन की भावना सदा जागृत रहे और सबका भला हो और सब आगे बढ़ते रहें, ऐसी बेहद की भावना पनपती रहें, तो दाता अर्थात मार्ग दिखाने वाले उसको दानी कहते हैं, महादानी अर्थात पुरुषार्थ में मार्गदर्शन करने वाले, और वरदानी अर्थात अपने शक्तियों का सहयोग दूसरों को देकर आगे बढ़ाने वाले। तो हमें वरदानी मूरत बनना है और सहयोग देते रहना है, इससे संगठन बहुत मजबूत होता है और उस संगठन के दायरे में माया प्रवेश करने की हिम्मत नहीं रखती है। तो इस तरह से अष्ट शक्तियों का अच्छी तरह से नॉलेज होने के बाद उनको हम प्रयोग में भी लाते रहें, ऐसा ना हो कभी हम सामना करने की शक्ति को आह्वान करें और आए समेटने की शक्ति हमारे सामने। अगर ऐसा होता है तो हम उस समय धोखा खा सकते हैं, इसलिए इन शक्तियों को यूज करने का लंबे समय का अभ्यास हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात मास्टर रचयिता हैं और ये शक्तियां हमारी रचना हैं। तो बाबा कहते हैं ये शक्तियां आपके ऑर्डर पर सदा चलती रहे तो ही आप निर्विघ्न स्थिति अनुभव कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में हम देखते हैं अष्टभुजाधारी देवियों की पूजा भक्त लोग करते हैं। अष्टभुजाधारी देवी के साथ गणेश जो विघ्नहारी गणेश होता है उसकी भी पूजा करते हैं। दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि अष्ट शक्तियों के प्रयोग से ही हम निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति करते रहते हैं और विजयी स्थिति अनुभव करके अपना जीवन खुशनुमा जीवन अनुभव करने लगते हैं। तो अपने ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न स्थिति रहने के लिए कुछ एक बातें अपने सामने रखना है, दो चार बातें। पहली बात, विघ्न को विनाश करने के लिए हमेशा एक समान में सदा स्थित रहें, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस समान में अगर आप रहते हैं तो सामने कोई भी विघ्न आता है उस विघ्न को परख कर आप तुरंत उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूं। तो उस समय आपके पास ये शक्तियां हाजिर रहती हैं और आप बिल्कुल अलर्ट और एक्टिव रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं, कोई माया का वार माया का विघ्न मेरे सामने न आए, तो मैं आत्मा विघ्न विनाशक आत्मा हूं, ये समान को सारे दिन भर में मेंटेन करते रहे, तो ये समान हमें बहुत मदद करता रहेगा विघ्न विनाशक स्थिति अनुभव करने के लिए। दूसरी बात है, सेवा के क्षेत्र में विघ्न को हटाने के लिए हमेशा याद रखें, कभी भी सेवा के क्षेत्र में आपस में टकराव हमारा ना हो। जहां टकराव होता है वहां स्थिति का बिखराव होता है, बहुत भारी नुकसान हमें होता है। लेकिन विघ्न विनाशक बनने के लिए तीन सेवक हमारे साथ में हमें रखना है। कौन से तीन सेवक? धैर्य, शांति और स्नेह। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी कठिनाई हमारे सामने आती है, तो धैर्यता को हमने खोना नहीं है, शांति को खोना नहीं है। धैर्य, शांति और स्नेह, स्नेह को कम होने नहीं देना है, तो स्वतः ही वो विघ्न टल जाता है। तो इन तीनों सेवक को हमें अपने साथ रखना है। चौथी बात, निर्विघ्न स्वयं को रखने के लिए किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में दुर्भावना न हो। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, फिर भी उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना, दुर्भावना न हो। ये कैसे संभव हो सकता है? ये क्यों जरूरी है? ये महान आत्मा की निशानी है। सबके प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति हमेशा शुभ भावना रखना, ये महान हस्ती की निशानी है, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की निशानी है। हमें केवल एक बात को जीवन में अपनाना होगा, हमें विशेषताओं का चश्मा पहनना होगा। जब हम विशेषताओं का चश्मा पहनते हैं, तो हर आत्मा की विशेषता हमें नजर आती है, उसके प्रति हमारे दिल में प्यार उत्पन्न होता है और दुर्भावनाएं हमारे मन में खत्म हो जाती हैं। किसी से हमारा स्नेह कब बढ़ता है? जब उसकी अच्छाई हम देखते हैं। और किसी से स्नेह हमारा कम क्यों होता है? कम कब होता है? जब हम उसकी कमी देखते हैं। इसलिए हमें सबकी अच्छाई देखना है, तो सदा हम निर्विघ्न रहेंगे। और पांचवी बात है, हमें सकाश के द्वारा निर्विघ्न वायुमंडल बनाते रहना है। सकाश के द्वारा अर्थात मनसा सेवा के द्वारा हमें निर्विघ्न वायुमंडल बनाना है। अगर निर्विघ्न वायुमंडल बनाते जाते हैं, तो उस वायुमंडल में कोई भी विघ्न आ नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। इतना बड़ा जो महायज्ञ बाबा ने स्थापन किया है, इस महायज्ञ में जो भी व्यवधान आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, उनको विघ्न कहते हैं। लेकिन उन विघ्नों को अपनाने के लिए हमें सकाश देकर वायुमंडल को निर्विघ्न बनाते रहना है। और उसमें भी विशेष हमें ध्यान देना है, मेरे स्थिति में या मेरे व्यवहार में भी कभी विघ्न न आवे। विघ्न क्यों आता है? हमारे ब्राह्मण परिवार में आपस में जब हम व्यवहार में आते हैं, तो किसी न किसी प्रकार का विघ्न आते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी कोई कमी और कमजोरी। दूसरा कारण है पिछला नेगेटिव हिसाब किताब। तीसरा कारण है कर्मों का बंधन, और चौथा कारण है आत्मा में जो विकारों के अंश वंश है उसका होना, और पांचवा कारण है कुछ लेन देन किसी की होना। तो ये विभिन्न प्रकार से हमारे सामने विघ्न आ सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में हमें सदा निर्विघ्न होकर रहना है। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी के साथ में मधुबन में 30 वर्षों तक रहा, और उस समय के दौरान यज्ञ में समय प्रति समय किसी न किसी प्रकार के विघ्न आते रहे, लेकिन जब भी कोई विघ्न आता था तो दादी जी का एक स्लोगन बहुत पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। कोई भी विघ्न या समस्या आता था, दादी उसके बारे में चर्चा नहीं करती थी, सबको कहती थी सामूहिक रीति से तपस्या करो, ये विघ्न टल जाएगा। अब सामूहिक रीति से तपस्या करना अर्थात हम अकेले उस समस्या का विघ्न का सामना करते हैं, लेकिन तपस्या करना अर्थात बाबा का साथ अनुभव करना। जब भगवान का साथ हमें मिलता है तो किसी भी बात में हमें सफलता न मिले ये हो नहीं सकता है। इसलिए हमें एक ही स्लोगन याद रखना है, करो तपस्या मिटे समस्या। मुझे याद है 72 में दिल्ली के मैदान पर, रामलीला मैदान पर ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत बड़ा मेला पहली बार होने जा रहा था। बहुत से 700-800 भाई बहने उस मेले की तैयारी में लगे थे। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। अचानक हमें ऑर्डर आती है कि इस मेले को यहाँ से हटा दो, हमें यहाँ रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी करना है, क्योंकि उस समय रशिया का प्रेसिडेंट भारत को गेहूं देते थे। तो ये ऑर्डर आते ही दादी तो सोचने लगी, ये तो ऑर्डर ही गवर्नमेंट ने भेजी है। दादी ने कहा कोई बात नहीं, सारी रात सभी तपस्या में बैठो। सेंटर पर भी दादी ने मैसेज भेज दिया, दिल्ली के सभी सेंटर वाले तपस्या सामूहिक रीति से करो। तो उस समय कोई सीआईडी इंस्पेक्टर को गवर्नमेंट ने भेजा, फिर उन्होंने देखा यहाँ तो दुर्गा देवी का ओपनिंग मॉडल बना हुआ है, इतना सारा आधा मेला तो तैयार हो चुका है। तो ये सारी रिपोर्ट उन्होंने जब गवर्नमेंट को दी तो गवर्नमेंट से ऑर्डर हमें आती है कि आप अपना मेला आगे बढ़ाते रहो, हम रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी दूसरे ग्राउंड में करने जा रहे हैं। आप देखो गवर्नमेंट के भी ऑर्डर को बदली करना, चेंज करना, ये ताकत तपस्या में है, सामूहिक रीति से तपस्या में है। इसलिए कोई भी विघ्न अगर हमारे पास आता है तो उस समय बाबा की मदद हमें लेना है, बाबा का साथ अनुभव करना है। विघ्न है क्या चीज? विघ्न है कागज का शेर। कागज का शेर माना क्या? हम हवाई जहाज में ऊपर से उड़ते हैं तो नीचे देखते हैं खिड़की से तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ एकदम छोटे लगते हैं, और बड़े बड़े व्हीकल जो ट्रक ट्रक चलते हैं वो माचिस की डिब्बी की तरह लगते हैं, छोटे लगते हैं। तो बाबा ने एक बार कहा था जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो छोटे विघ्न को भी बहुत पहाड़ की तरह अनुभव करते हैं, और जो महीन बुद्धि वाले होते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले दिव्य बुद्धि वाले होते हैं, वो बड़े पहाड़ जैसे समस्या को भी, विघ्न को भी राई जैसे ही नहीं रुई की तरह समझते हैं और उस विघ्न को सरल रीति से पार करते हैं। तो हम सभी महीन बुद्धि वाली आत्माएं हैं, मोटी बुद्धि वाली आत्माएं नहीं हैं, क्योंकि बाबा जो हमें ज्ञान का स्नान हर रोज कराते हैं, योग का स्नान हमें हर रोज कराते हैं, उससे हमें दो प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। ज्ञान से हमें महसूसता की शक्ति मिलती है और योग से हमें परिवर्तन शक्ति मिलती है। ये दो प्रकार की शक्तियां हमारे साथ साथ सदा चलती रहें। जब तक हम संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, ये दोनों शक्तियां हमारे पास रहेगी तो कोई भी विघ्न हमारे सामने टिक नहीं सकता है, बल्कि ये दोनों शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहें, गहराई से बढ़ती रहें। ज्ञान की गहराई बढ़ना अर्थात रियलाइजेशन पावर बढ़ते जाना, योग की गहराई बढ़ना अर्थात परिवर्तन शक्ति अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन पावर बढ़ना। तो रियलाइजेशन पावर और ट्रांसफॉर्मेशन पावर बढ़ती हैं तो हमारी कोई भी कमी कमजोरी हमारे में नहीं रहती है और परिणाम स्वरूप निर्विघ्न जीवन, खुशनुमा जीवन हम अपना ब्राह्मण जीवन अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं संगम योगी जीवन मौजों का जीवन है, खुशनुमा जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। इस जीवन को हमने बहुत अच्छी तरह से मौजों का जीवन अनुभव करते जाना है। एक एक पल, एक एक घड़ी हमें खुशी की या आनंद की अनुभूति करते रहना है, क्योंकि ये निरंतर खुशी में और निरंतर नशे में रहने का संस्कार आत्मा में जब जाता है तो नई दुनिया में हम मौजों की जीवन बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें विभिन्न प्रकार के झूले दिए हैं। बाबा कहते हैं आप बहुत रॉयल बच्चे हैं, आपका पैर कभी भी मिट्टी में न पड़े। तो बुद्धि रूपी पैर हमारा इस पुरानी दुनिया की मिट्टी में न लगे, इसलिए बाबा ने हमें विभिन्न प्रकार के झूले दिए हैं। उन झूलों में हम झूलते रहे और बहुत मस्ती से खुशनुमा जीवन अनुभव करते रहे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है, आपके जीवन में सबसे सुनहरे पल कौन से हैं, सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं, क्या जवाब देंगे बोलिए। हाँ जी, जब मैं आत्मा परम धाम में भगवान के साथ बैठी हुई अनुभव करती हूँ, सात बातों का जो सागर है बाबा, उनके सात सागरों के कंठे पर अर्थात समीप बैठती हूँ, तो परम सुख की परम आनंद की अनुभूति करती हूँ। ये मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है और ये हमारी अमूल्य पूंजी है। इन पलों को हमें बढ़ाते जाना है। और बाबा ने आपको इतनी बड़ी लॉटरी दी है, इतने श्रेष्ठ स्थान पर आकर तपस्या करने की लॉटरी दी है, इस लॉटरी का आपको पूरा लाभ लेना है और हर पल को सफल करते जाना है और खुशनुमा जीवन अनुभव करते जाना है, समझा। तो इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इस स्वमान में हमें सदा स्थित रहना है, क्योंकि मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा हूँ। शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा गिदड़ या वैसा ये नहीं होता है, गाय बकरी नहीं होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो ऐसे सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं। ऐसे पोजीशन पर, ऐसे सिंहासन पर हम जब बैठते हैं तो माया हमें सैल्यूट मारती है। हम माया को सैल्यूट नहीं मारेंगे, अभी वो हमें सैल्यूट मारें। हम द्वापर युग से हम उसको सैल्यूट मारते रहे, अभी भगवान के बच्चे बनने के बाद भी माया दुश्मन को हम सैल्यूट मारे ये शोभा नहीं देता है। वो हमें सैल्यूट मारे तो वो हमारा सत्कार करें, तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाते जाना है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये दोनों चीजें कंबाइन होगी तो ऐसी स्थिति आपकी बनी रहेगी। बहुत अच्छी तरह से सुंदर अनुभव बाबा आपको कराते जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति के द्वारा निर्विघ्न जीवन अनुभव करना, ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, है नहीं ना? तो अभी हम बहुत सुंदर गहन अनुभूति चंद घड़ियों के लिए करने जा रहे हैं। एक बार सभी अच्छी तरह से तालियां बजाएंगे, एक बार अच्छी तरह से बजाएंगे तालियां। अभी सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ये निकालो ना, एक क्या मुंह की तरफ बांध के रखा है, निकालो, फ्री हो जाओ, आजाद पंछी होके रहो, बैठो। कोई कॉपी पेन डायरी पर्स वर्स सब हटा दो, एकदम आजाद पंछी बनकर बैठेंगे और बहुत सुंदर अनुभूति योग की करेंगे। ओम शांति। ईश्वरी रूपी मकान में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, शक्तियों की सजीव तरंगे, शक्तियों के प्रकंपन, अष्ट शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों फैल रहे हैं। मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे माया पर विजय पाने के लिए ज्ञान और योग के दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए हैं। उन दिव्य शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग करके मैं निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति करता रहता हूँ। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान, आत्मा हूं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान, भगवान ने मुझे सर्वशक्तियां व्हील के रूप में प्रदान की है। मैं शक्तिशाली आत्मा, इस देह से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर प्रस्थान कर रही हूं, उड़ रही हूं। इस सृष्टि रूपी रंग मंच से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में, निराली दुनिया में पहुंच चुके हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मौज शक्तिशाली आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर, हल्की फुल्की ड्रेस यह। ओहो, फरिश्तों के महाराजा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। सर्वशक्तिवान निराकार शिव पिता भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम शक्तियां, प्रचंड शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति की अनुभूति हो रही है। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा मुझे कह रहे हैं कि लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। मेरे संग में रहकर संग का रंग लगाते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। मेरे दुलारे बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मेरे शिक्षक हर रोज दूर देश से आकर मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। सचमुच मुझे अपने टीचर पर नाज है। मैं उनका आइडियल स्टूडेंट हूं। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से, शक्तिशाली दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरदानी हाथ अपने सिर पर सदा अनुभव करो। सदा मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे हाथ में हाथ पकड़कर वतन की सैर करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रास रचाओ। दिल की मेरे साथ लेन देन करो, स्वयं को सदा लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव करो। सचमुच मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की हल्की फुल्की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। जगमगती ज्योति उड़ती हुई जा रही हूँ। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं जहां चारों सुनहरी लाल हिला, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है, स्वीट साइलेंस डीप साइलेंस अनुभव हो रही है। ओ मेरे प्राणों के प्राण सर्वशक्तिवान शिव पिता मज शक्तिशाली आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के शक्तिशाली स्वरूप को दिव्य नेत्र से निहार रहे हूं। बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। इस आकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली हैं। ज्ञान सूर्य शक्तियों के सागर शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात मज शक्तिशाली आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा प्रचंड शक्तियां शक्तियों के सागर शिव पिता से स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पांव भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं, और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर मास्टर सर्वशक्तिवान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हूं। मौजम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रहे हैं। मौजम मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक चारों फैल रही है। ओम शांति शांति।